नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर के वचन के अध्ययन के द्वारा अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं और आज भी प्रतिदिन की तरह परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है, हम इन दिनों यूहन्ना रचित सुसमाचार से अपने अध्ययन को जारी किए हुए हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके पूर्व आइए हम सब परमेश्वर की निकटता में आएं और परमेश्वर से सहायता मांगें, ताकि आज के वचन में जो कुछ भी हम सीखते हैं हमारे आत्मिक उन्नति का कारण बने। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से एक बार दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, उसमें विचार करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम में से प्रत्येक की आत्मिक आँखों को, हमारे कानों को, हमारे हृदय और विचारों को खोल दें, हमें एकाग्रता पन दें, ताकि जब हम आपके वचन को सुने, उस पर विचार करें, तो निश्चित रूप से आपका जीवित वचन हमारे हृदयों से बोलने और बातचीत करने पाए। होने दे पिता परमेश्वर, जो हमारे भाई और बहन दुखी हैं, निराश में हैं, चिंता और परेशानी में हैं, किसी न किसी कारण से अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं, प्रभु आप उनके जीवन से बातचीत करें, ताकि वे आज के इस जीवित वचन के द्वारा अपने जीवन में आपको पा सकें और शांति और आनंद अपने जीवन में देखने पाएं। हमारी प्रार्थना है कि आप प्रत्येक श्रोता भाई बहनों की सहायता और मदद करें। इस समय फिर से एक बार हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना बड़ी दया के साथ आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, पिछले अध्ययन में निकोदिमस की कहानी को बीच में ही रोकना पड़ा था। यीशु ने उससे कहा था कि जब तक मनुष्य नए सिरे से न जन्म ले, वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता, जिसका अर्थ निकोदिमस नहीं समझ पाया था और वह उलझन में पड़ गया कि मनुष्य बूढ़ा होकर फिर से जन्म कैसे लेगा। मित्रों, यहाँ अंतर आता है, आत्मिक मनुष्य और प्राकृतिक मनुष्य। धर्म का आडंबर आत्मिकता से दूर होता है और यीशु ने उसे सच्चाई बता दी कि वह अपने आडंबर के द्वारा से प्रभु को नहीं पा सकता है, अर्थात उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:5 को पढ़ें। लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मित्रों, जल और आत्मा से जन्म लेने का क्या अर्थ है? कुछ लोगों के विचार में जल का संदर्भ पानी के बपतिस्मे से है। विश्वासी डॉक्टरों के अनुसार जल से जन्म लेने का अर्थ है प्राकृतिक जन्म। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब वह पानी में होता है। मेरे विचार में यीशु के कहने का अर्थ इन दोनों व्याख्याओं से अलग था, क्योंकि वह स्वर्गिक जन्म के बारे में बातें कर रहा था। मित्रों, जैसा कि हमने अध्याय 2 में देखा है कि जल परमेश्वर के वचन का प्रतीक है, हमारे अध्ययन में आगे चलकर हम देखेंगे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 17:17 में यीशु कहता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है, अर्थात वचन में शोधन क्षमता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:3 में यीशु कहता है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। मित्रों, हम यह मानते हैं कि जल और आत्मा से जन्म लेने का अर्थ है वचन के द्वारा पवित्र आत्मा से जन्म लेना। यहाँ हमारा विश्वास है कि जब तक पवित्र आत्मा वचन को हमारे जीवन में प्रासंगिक न बना दे तो हम नया जीवन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक में 3 व्यक्तियों का नया जन्म विशेष करके व्यक्त किया गया है, कूशी खोजा, कॉर्नेलियस और पौलुस। वे सब हमारे लिए स्पष्ट उदाहरण हैं कि नया जन्म परमेश्वर के वचन से होता है, जिसमें पवित्र आत्मा काम करता है और मनुष्य एक साधन मात्र है। अतः मेरा विश्वास है कि जल और आत्मा से मसीह यीशु का अभिप्राय था पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर के वचन के प्रभाव से नया जीवन पाना। मित्रों, इसके बिना निकोदिमस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता था। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:6 में पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। मित्रों, मनुष्य का पुराना स्वभाव या पुराना मनुष्यत्व बदलना असंभव है और परमेश्वर उसे बदलना भी नहीं चाहता। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यह पुराना मनुष्यत्व परमेश्वर के साथ विद्रोह की अवस्था में रहता है। पौलुस रोम की कलीसिया को लिखता है, रोमियों की पत्री 8:7-8 में, दैहिक मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। पुराने मनुष्यत्व के पुनरुद्वार के लिए परमेश्वर के पास कोई योजना नहीं है, उसे तो कब्र में ही जाना है। वह कभी भी परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं होगा, परंतु यह मनुष्यत्व नया स्वभाव पाएगा जो केवल आत्मिक पुनर्जन्म से ही संभव है। मित्रों, यहाँ देखिए, निकोदिमस इस जीवन से वंचित हो रहा है, जबकि वह यहूदियों का सरदार वरन एक महान धर्मी जन है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:7-8 में आगे पढ़ते हैं, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। मित्रों, हवा अपनी प्रकृति से चलती है, हम उसके मार्ग में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, परंतु हम निश्चय ही कह सकते हैं कि हवा चल रही है, क्योंकि हम पेड़ों के पत्ते हिलते हुए देखते हैं। मेरे मित्रों, आत्मिक जन्म पर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं, परंतु मैं आपको आत्मिक जन्म की व्याख्या नहीं दे सकता। उन लेखकों में और मुझ में यही अंतर है कि मैं स्वीकार करता हूं कि मैं इसके बारे में नहीं जानता। मैं यह तो नहीं कह सकता कि परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करता है, परंतु मैं निश्चय ही कह सकता हूं कि वह कब मनुष्य के जीवन में और मन में काम कर रहा है। हमारा प्रभु ठीक यही कह रहा था। मित्रों, यीशु ने निकोदिमुस के दो मुखौटे उतार दिए। यीशु के सामने अब वह न तो फरीसी है और न ही यहूदियों का सरदार, तब वह कौन है? हम यूहन्ना 3 अध्याय उसके 9 पद में पढ़ते हैं, निकोदिमुस ने उसको उत्तर दिया कि ये बातें क्यों कर हो सकती हैं। अब आप ध्यान दीजिए, अब वह एक अबोध बालक की नाई वहां खड़ा है और आश्चर्यचकित है कि यह कैसे होगा। यीशु उससे स्पष्ट कहता है, हम भी अपने सच्चाई को मुखौटे के पीछे छिपाए रखते हैं, परंतु प्रभु यीशु के सामने हमारे मुखौटे असफल सिद्ध होते हैं। उसके सामने आप अपने वास्तविक रूप में होते हैं, और यदि आप अपनी वास्तविकता को स्वीकार करें तो वह आपके साथ व्यवहार करेगा। निकोदिमुस के साथ यीशु ने ऐसा ही किया। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 10 पद में पढ़ते हैं, यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तो इसराइलों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मित्रों, ध्यान दीजिए, यीशु के इन शब्दों में उपहास है। यीशु ने उससे कहा कि वह इसराइलों का गुरु है और यीशु की बातों को समझ नहीं पा रहा है। संभवतः वह सोच रहा था कि यदि यीशु की बातें सच होती तो वह उनसे पूर्व परिचित होता। इस कारण यीशु ने उससे कहा, निकोदिमुस, क्या तू यह भी नहीं समझता? तब हम आगे देखते हैं, यूहन्ना 3 अध्याय उसके 11 से 13 पद में, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम तो जानते हैं, वह कहते हैं जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर क्यों कर प्रतीति करोगे? और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। यीशु ने निकोदिमुस से कहा कि उसने यीशु की गवाही को सुनकर भी स्वीकार नहीं किया। यहां यीशु उस आवागमन की ओर आ रहा है जिसकी चर्चा मैंने प्रस्तावना में संदर्भ सहित की थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 28 में उसने कहा, मैं पिता की ओर से जगत में आया हूं, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूं। मित्रों, इसी प्रकार वह यहां कहता है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र। यह पद विशेष करके उनके लिए है जो एलिय्याह और हानोक का स्वर्ग में जीवता प्रवेश मानते हैं। यीशु के अनुसार केवल वही स्वर्ग में गया और इसी कारण वह स्वर्ग का भेद प्रकट करता है। यीशु के बाद तो असंख्य जन स्वर्ग गए हैं, परंतु पुराने नियम में पवित्र जन अधलोक में जाते थे जहां अब्राहम उन्हें शांति देता था। जब तक यीशु इस पृथ्वी पर था तब तक कोई मनुष्य स्वर्ग में नहीं गया। अधोलोक में प्रतीक्षा करती संतों की आत्माओं को यीशु अपने साथ स्वर्ग ले गया। उसके स्वर्गरोहण के बाद स्वर्ग का मार्ग खुल गया था। पौलुस क्रुंथ की कलिसिया को लिखता है, 2 कुरुंथियों की पत्री 5 अध्याय उसके 8 पद में, देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। आइए हम पढ़ें यूहन्ना 3 अध्याय उसके 14 और 15 पद को, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, परमेश्वर इसराइल के कुड़कुड़ाने से रुष्ट हुआ और उसने जंगल में सांप भेजे जिनके काटने से इसराइल वंशी मरने लगे। तब मूसा की प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने उनके उद्धार के लिए मूसा से कहा कि वह पीतल का एक सांप बनाकर ऊंचे पर लटका दे कि जिसे सांप काटे वह उसे निहारे और मरने से बच जाए। वह सांप उनके पाप का प्रतीक था और पीतल परमेश्वर के दंड का। इसी प्रकार मसीह यीशु भी ऊंचे पर अर्थात क्रूस पर लटकाया गया कि उसे देखने वाले को अपने पाप का और अपने पाप के दंड का बोध हो जाए। वह हमारे पापों के कारण क्रूस पर लटकाया गया था। अब यीशु निकोदेमुस से जो कहता है वह पद हम सब जानते हैं। देखें यूहन्ना 3 उसका 16 पद, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ ध्यान देने योग्य दो पद हैं। पहला, हमें नया जन्म लेना आवश्यक है, और दूसरा, मनुष्य का पुत्र ऊंचा पर उठाया जाएगा। इन दोनों पदों का परस्पर संबंध है, क्योंकि यीशु ने हमारे पापों का दंड उठा लिया, वह ऊंचे पर लटकाया गया और हमारे पाप हर लिए। पवित्र आत्मा हमें नया जन्म देगा। हमारे नए जन्म के द्वारा ही परमेश्वर हमें स्वीकार करता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। मैं यहाँ एक भ्रम को दूर करना चाहता हूँ। अनेक लोगों का मानना है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और उसका उद्धार किया। प्रेम मेरे मित्रों उद्धार प्रदान नहीं करता है, उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह का वरदान है। पौलुस इफिसियों की कलीसिया को लिखता है, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 8 और 9 पद में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। अतः उद्धार परमेश्वर का अनुग्रह है। यहाँ ध्यान देने योग्य एक विशेष बात है, जो कोई उस पर विश्वास करे। क्या विश्वास करे? कि उसने हमारे पापों का दंड भोगा है अर्थात उठा लिया है। मेरे मित्रों, आपको विश्वास करना है कि वह आपके स्थान पर मरा नहीं तो आप मारे जाते। हम यूहन्ना 3 अध्याय उसके 17 और 18 पद में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके साथ या उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यहाँ पद 17 से स्पष्ट है कि प्रभु यीशु उद्धार करने आया था, न्याय करने नहीं। लुकार्ची सुसमाचार 12 अध्याय उसके 14 पद में भी वह स्पष्ट कहता है, न्याय करने वाला वह नहीं है। न्याय करने के लिए वह फिर जगत में आएगा। जो कोई मसीह यीशु के नाम में विश्वास करता है वह दंड का भागीदार नहीं है, उसको अनंत जीवन मिल गया। परंतु जो विश्वास नहीं करता वह तो पहले ही से दंड के योग्य ठहराया गया है। मित्रों, यहाँ एक बात ध्यान रखना आवश्यक है कि यीशु एक फरीसी से बात कर रहा है, और फरीसी यह मानते थे कि मसीह न्याय करने आएगा। पुराने नियम में मसीह के 2 रूप दिखाए गए हैं, एक उद्धारकर्ता जो दंड स्वरूप अपनी जान देगा, और दूसरा वह न्यायकर्ता। देखिए भजन संहिता 2 उसके 9 में लिखा है, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के वर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। और दानियल की पुस्तक 7 अध्याय उसके 13 और 14 पद में उसे संपूर्ण जगत का न्यायकर्ता कहा गया है। भजन संहिता 45 में भी लिखा है कि वह जगत में धार्मिकता का राज करेगा। यशाया 11 और 45 में उसके धार्मिकता के न्याय की चर्चा की गई है। यीशु ने निकोदेमुस से स्पष्ट कह दिया कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को न्याय करने नहीं वरन उद्धार करने भेजा है, संपूर्ण जगत का उद्धार। यूनानी शब्द जो जगत का मूल शब्द है उसका अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड। मित्रों, जगत पर तो पहले से ही दंड की आज्ञा है, परंतु जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। सुसमाचार यही है कि मनुष्य को क्षमा का अवसर दिया जा रहा है। जो स्वीकार करेगा वह अनंत जीवन पाएगा, और जो नहीं करेगा वह नहीं पाएगा। क्या आप इस क्षमा के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे? अन्यथा दंड की आज्ञा तो दी जा चुकी है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 19 से 21 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। जगत को ज्योति नहीं भाती क्योंकि उसके काम बुरे हैं। ज्योति तो संसार में आ चुकी भी है, परंतु संसार ने उसे नाश करने का निर्णय लिया, अर्थात यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की। आज मुझे एक पत्र मिला जिसमें एक लड़की ने लिखा कि उद्धार पाने से पूर्व वह हमारे रेडियो अध्ययन की ओर ध्यान नहीं देती थी। क्यों? क्योंकि स्वभाव से वह ज्योति के विरुद्ध थी। केवल वे जो मसीह को ग्रहण करते हैं ज्योति की इच्छा रखते हैं। मेरे मित्रों, यहाँ ध्यान दें कि यीशु की शिक्षण शैली नकारात्मक है। जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। आज के युग में सकारात्मक सोच के सामर्थ्य पर ध्यान दिया जाता है, परंतु सत्य तो यह है कि नकारात्मक विचारों में बहुत शक्ति है। देखिए यीशु ने क्या कहा, मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 17 पद में, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। 10 अध्याय के 45 में मिलता है, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। मित्रों, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। उसने कहा कि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है, जो सत्य पर चलता है वह ज्योति से निकट आता है। बुराई और अंधकार का ज्योति और सत्य से कभी मेल नहीं होता है। यूहन्ना बपतिस्मा यीशु की गवाही देता है। हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 22 से 24 पद में, इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा, और यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे, क्योंकि यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। ध्यान दीजिए, यूहन्ना अब तक प्रचार कर रहा था, स्वर्ग का राज्य निकट है, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 2 पद में पाते हैं। यीशु की परीक्षा के बाद उसे बंदीगृह में डाला गया था। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 25 और 26 पद में आगे पढ़ते हैं, वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यर्दन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। मित्रों, ऐसा प्रतीत होता है कि यूहन्ना के शिष्यों में ईर्ष्या का भाव जागा था। वे डरते थे कि यूहन्ना के अनुयायी यीशु की ओर न चले जाएं। यूहन्ना स्पष्ट कहता है कि उसमें ईर्ष्या नाम का भाग है ही नहीं। तब हम आगे देखते हैं यूहन्ना 3 उसके 27 से 30 पद में, यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ भी नहीं कर पाता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं, परंतु उससे आगे भेजा गया हूँ, जिसकी दुल्हिन है वही दुल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है, अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। यूहन्ना पुराने नियम का अंतिम भविष्यवक्ता है। यूहन्ना दुल्हन अर्थात कलीसिया के साथ नहीं है, तो फिर वह कौन है? वह दूल्हे का मित्र है, तो क्या वह मेमने के विवाह भोज में नहीं होगा? निसंदेह वह भी होगा, परंतु कलीसिया के मध्य नहीं होगा। मित्रों, यहां एक तथ्य बार बार सामने आएगा, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। यूहन्ना 6 अध्याय उसके 65 में यीशु भी कहता है, जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। आगे यूहन्ना कहता है कि प्रभु यीशु को बढ़ना है और उसे घटना है, उसकी सेवा का अंत निकट था। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 31 से 36 पद में आगे पढ़ते हैं, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है, और पृथ्वी ही की बातें कहता है, जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है, जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप दे दी कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। यूहन्ना ने स्पष्ट कर दिया कि प्रभु यीशु उससे बड़ा है। उसने यीशु के बारे में यह गवाही दी, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। मित्रों, इससे अधिक स्पष्टीकरण और क्या हो सकता है? अनंत जीवन का प्रस्ताव खुला है। यूहन्ना ने सुसमाचार प्रचार आरंभ कर दिया था कि अनंत जीवन मसीह में विश्वास के द्वारा प्राप्त होता है। कैसी महान गवाही है। मित्रों, अध्याय 3 के साथ हम अपना आज का अध्ययन समाप्त करते हैं और अगले अध्ययन में हम अध्याय 4 से आरंभ करेंगे। अतः आप अध्याय 4 अवश्य पढ़कर आएं और तब तक इन बातों पर विचार करें कि जन्म और आत्मा ये सब क्या है, अर्थात नया जन्म लेना क्यों आवश्यक है, और जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। यीशु जगत का उद्धार करने आया था, न कि उसे दंड देने। मित्रों, हम अगली बार जब वह आएगा उसके बारे में देखेंगे कि वह जगत का न्याय करने आएगा। तब तक आप अवश्य ही इस पर विचार करें कि क्या आप उस पर विश्वास करते हैं कि वह आपका उद्धार करता है, या आप ये विश्वास करते हैं कि वह आपका न्याय करने आ रहा है। मित्रों, निर्णय आपको लेना है, इसलिए आज ही उसके पास आए और उससे प्रार्थना करें ताकि वह आपकी सहायता करे और आप भी उस उद्धार के आनंद के भागीदारी हो सकें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
से ज्यादा मेरे मांगने से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर मेरी राहों में थी मुश्किल मैंने पाई है मंजिल यीशु से। से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर मेरी राहों में थी मुश्किल। मैंने पाई है मंजिल।